10. सूफियों का चरम लक्ष्य। सूफियों का चरम लक्ष्य परमात्मा के साथ एकमेक होना है। अलहक के साथ पुनः एकत्व प्राप्त करना सूफी साधना का चरम लक्ष्य है। सूफी साधक जब देखता है और उसे जब यह अनुभूति होती है कि समस्त क्रियाओं और अस्तित्वों का एकमात्र कारण परमात्मा की शक्ति है तथा यह समस्त दृश्यमान जगत उसकी अभिव्यक्ति मात्र है, तब वह उस रहस्य को जानना चाहता है। वह जानता है कि उस रहस्य का भेदन तर्क और बुद्धि का विषय नहीं है। उसे जानने के लिए मनुष्य को साधना द्वारा अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि यह उस ज्योति की एक किरण को अपने हृदय में ग्रहण करे और उसके आलोक में अलहक को देख सके। वह जानता है कि यह असत जगत दर्पण की नाई उसके गुणों और नामों को प्रतिबिंबित करता है तथा मनुष्य अपने भीतर इस समस्त ब्रह्मांड को छिपाए हुए परमात्मा के सभी गुणों को प्रतिबिंबित कर रहा है। लेकिन मनुष्य इतना ज्ञान प्राप्त कर ही संतोष नहीं कर लेता। इस रहस्य को जानना ही वह अपना लक्ष्य नहीं मानता, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर वह उस परम सत्य के साथ एकमेक हो जाना चाहता है जो सब कुछ का उद्गम, सब कुछ का परिचालक है तथा जिसकी सत्ता ही एकमात्र सत्ता है तथा जो एकमात्र शक्ति है। सूफियों के चरम लक्ष्य तथा फना और बका आदि के संबंध में आगे चलकर हम विस्तृत रूप से कहना चाहेंगे। उसके पहले भावाविष्टावस्था को समझने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि सूफी साधना में इसका बहुत महत्व है। सूफियों की इस अवस्था का वर्णन करना अत्यंत असंभव है जिसमें वे परमात्मा के साथ एकमेक हो जाते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करना सबके लिए संभव नहीं। कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जैसे पैगंबर तथा उच्च श्रेणी के संत, पृष्ठ संख्या 291, जो परमात्मा के अनुग्रह से उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में कभी कभी ही ऐसे क्षण आते हैं जब वे समस्त इंद्रियगत विषयों से परे हो जाते हैं और उस आध्यात्मिक जगत को प्रत्यक्ष करते हैं। उस जगत में काल और स्थान नाम की कोई वस्तु नहीं। वहाँ वे उस परम सत्य को प्रत्यक्ष कर पाते हैं जो सब पदार्थों का उद्गम स्थल है और जो उन पदार्थों में अभिव्यक्त होने वाला एकमात्र सत्य है। उन्हीं महान आत्माओं के अनुभव और कथनों के आधार पर सूफियों के एकमेक होने की अवस्था तथा आध्यात्मिक जगत के अन्य रहस्यों को समझने की चेष्टा की जाती है। अपने आप में यह अनुभूति कुछ ऐसी है कि उसे इस जगत में बोली जाने वाली भाषा के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्हें समझाने के लिए संकेतों और प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। उस अवस्था को प्राप्त किए हुए साधक भी यह बतलाने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं कि वह क्या है। कुछ ऐसे साधक हुए हैं जिन्होंने इस अवस्था की प्राप्ति के बाद इस अवस्था को समझाने की चेष्टा की है, अथवा ऐसा भी हुआ है कि उस अवस्था में रहते हुए उनके मुंह से अनायास कुछ वाणियां निकल गई हैं जिनसे उस अवस्था का कुछ अनुमान किया जा सकता है। मंसूर बिन हल्लाज ने संभवतः इसी अवस्था में रहते हुए अनल हक अर्थात मैं परमात्मा हूँ कहा था। यह कथन इस्लाम के विरुद्ध है। बहुत लोगों ने इसकी व्याख्या की है और कुछ लोगों ने सनातन पंथी इस्लाम के सिद्धांतों के साथ उससे सामंजस्य बैठाने की चेष्टा की है। सामंजस्य बैठाने के लिए तीन प्रकार की दलीलें उपस्थित की जाती हैं। प्रथमतः यह कहा जाता है कि उसका आचरण परम सत्य के विरुद्ध नहीं था, लेकिन शरीयत के विरुद्ध अवश्य था। हल्लाज ने परमात्मा संबंधी इस गूढ़ रहस्य को उन लोगों के निकट प्रकट किया जो उसके अधिकारी नहीं थे। दूसरी दलील यह दी जाती है कि उसने जो कुछ कहा वह भावाविष्टावस्था में कहा था। उससे गलती यह हुई कि उसने यह समझा कि परमात्मा की पृष्ठ संख्या 292 जात सत्ता के साथ वह एकत्व प्राप्त किए हुए है, जबकि उसका एकत्व परमात्मा की कुछ सिफ्तों गुणों के साथ ही था। तीसरी बात यह कही जाती है कि उसने जो यह कहा कि परमात्मा और उसके बनाए हुए जीवों में कोई वैसी विभिन्नता या अंतर नहीं है, तो उसका सिर्फ यही मतलब था कि परमात्मा के एकत्व में सभी प्राणी अंतर्हित हैं। दृश्यमान जगत से जो बिल्कुल परे हो जाता है वह अपनी वास्तविक अवस्था में वास करता है और यह अवस्था ही परमात्मा है। उसमें न मैं का स्थान है, न हम लोगों का और न तू का ही। उसमें मैं, हम और तू एक ही वस्तु हैं। अतएव अनल हक कहने वाला हल्लाज नहीं था, वरन स्वयं परमात्मा था जो अहम की चेतना से परे हो जाने वाले हल्लाज के मुँह से इसका उच्चारण करता था। मी ई पृष्ठ 151-152। लुई मासियों ने हल्लाज पर जो प्रकाश डाला है उससे यह सिद्ध नहीं होता कि उसके कथन इस्लाम विरोधी नहीं थे। चाहे जो हो, हल्लाज ने जिस प्रकार से अनल हक का नारा बुलंद किया उसे मान लेने का मतलब यह था कि मनुष्य परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। यह इस्लाम के एकेश्वरवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है, लेकिन बाद के इतिहास को देखने से पता चलता है कि किस प्रकार से देवत्व की प्राप्ति की भावना और एकमेक होने की भावना में अभेद माना जाने लगा और परमात्मा की सर्वव्यापकता का सिद्धांत प्रचलित हो गया। सूफी साधकों का यह विश्वास है कि भावाविष्टावस्था वस्द ही एक ऐसा जरिया है जिससे आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है और उससे एकत्व लाभ कर सकता है। भावाविष्टावस्था के सिलसिले में सूफियों ने फना, लय प्राप्त होना, वस्द, भाव, समा, जौक, स्वाद, शर्ब, पीना, गैबत, अहम से बेखबर होना, जज्बात तथा हाल आदि शब्दों का प्रयोग किया है। एकमात्र सत्य परमात्मा के ध्यान आदि से मन के भीतर एक आलोड़न पैदा होता है और धीरे धीरे वह अपने अहम को पृष्ठ संख्या 293 खो बैठता है। साधक की चेष्टा की यह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था की प्राप्ति के बाद उसे अपनी ओर से करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। जिस व्यक्ति को यह अवस्था प्राप्त होती है उसके लिए इस अनुभव को प्रकट करना असंभव है। उस अवस्था की प्राप्ति का मतलब है कि साधक के सभी मानवीय गुणों और व्यापारों का उस अवस्था में अंत हो जाता है। परमात्मा का प्रेम उसे पूर्ण रूप से आत्मसात कर लेता है। उस अवस्था का वर्णन फिर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जब मनुष्य फिर अपनी प्रकृत अवस्था में लौट आता है तब उसके मन हृदय पर भौतिक जगत की वस्तुओं का अधिकार हो जाता है। इसलिए अमर बिन उस्मान अल मक्की का कहना था कि भावाविष्टावस्था की कोई व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यह परमात्मा और उस पर सच्चा ईमान लाने वालों के बीच का रहस्य है। कश्फ पृष्ठ 138। सादी ने भावाविष्टावस्था को सहज भाव से समझाने के लिए एक जगह कहा है कि एक दरवेश से उसके अन्य साथियों ने व्यंग करते हुए पूछा कि उस आनंद की फुलवारी से लौटकर वह कौन सा उपहार ले आया है। दरवेश ने जवाब दिया कि उस गुलाब की झाड़ी परमात्मा का दर्शन के पास पहुंचकर उसकी इच्छा हुई कि बहुत से गुलाब के फूल तोड़कर ले चलूं जिसमें कि अपने साथियों को उपहार दे सकूं। लेकिन जब वह वहां था तब गुलाब की झाड़ी की खुशबू से इतना मस्त हो गया कि उसकी पोशाक की खूंट जिसमें वह फूलों को बांधना चाहता था उसके हाथों से छूट गई। जिसने परमात्मा को जान लिया है उसकी जिह्वा में शक्ति नहीं रह जाती कि वह कुछ कह सके। दर पृष्ठ 359। भावाविष्टावस्था के द्वारा साधक उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां वह परम सत्य का साक्षात्कार करता है और जहां वह परमात्मा के साथ एकमेक हो जाता है। साधना के इस स्तर तक पहुंचने में स्त्री पुरुष का भेद कोई अर्थ नहीं रखता। पुरुष भी इस स्तर तक पहुंच सकते हैं और पृष्ठ संख्या 294 स्त्री भी। साधना के क्षेत्र में भावाविष्टावस्था को प्रधानता तो अवश्य दी गई है, लेकिन उसे आगे का मार्ग प्रशस्त करने का साधन मात्र माना गया है। साधक के लिए इसकी अनुभूति आवश्यक तो मानी गई है, लेकिन इससे परे जाने की बात भी कही गई है। वास्तव में सूफी साधक भावावेश और निर्वेद में अंतर दिखलाते हुए निर्वेद को तरजीह देते हैं। भावावेश मानसिक आलोड़न और मदहोशी को वे निम्न कोटि का मानते हैं और इन्हें अनुभव शून्यता का चिन्ह मानते हैं। भावावेश के बाद जो शांति आती है, जो स्थैर्य आता है, वही उनके लिए अभीप्सित है। इन दोनों अवस्थाओं के लिए क्रमशः वस्द और वजूद शब्द का प्रयोग वे करते हैं। वजूद के लिए वस्द जरूरी है। जहां वस्द भावावेश की समाप्ति होती है वहां से वजूद का प्रारंभ होता है। वस्द हृदय की वह अवस्था है जो उस समय आती है जब साधक इस बात की प्राणपण से चेष्टा करता है कि उसके हृदय से समस्त जागतिक प्रपंच का अवसान हो जाए, संसार संबंधी कोई भी वासना न रह जाए। साधक बार बार अपनी समस्त शक्ति का उपयोग परमात्मा का ध्यान करने में लगाता है। उसके चिंतन और मनन के सिवा और कुछ भी उसके हृदय में नहीं रह जाता और इस प्रकार से वह जब समस्त मन प्राण से उसकी आकांक्षा करता है तब मानो उसके हृदय का दरवाजा खुल जाता है और उसमें हर्षातिरेक और आनंद का प्रवेश होता है। यह भावोल्लास की अवस्था बड़ी कठिनाई से आती है। भावोल्लास वस्द के बाद स्थिति वजूद की जो अवस्था आती है उसे सूफी साधक परमात्मा की देन मानते हैं। बहुतों ने भावोल्लास की अवस्था को श्रेष्ठ माना है और बहुतों ने स्थिति वजूद की अवस्था को। साधारणतः वजूद को ही सब लोग श्रेष्ठ मानते हैं। इसके बाद की अवस्था का उल्लेख भी किया गया है। कहा जाता है कि वस्द का वजूद साधक को अस्तित्व शून्य बना देता है और उसके बाद की जो अवस्था है उसे मौजूद का वजूद कहते हैं। अमा पृष्ठ 83 थ्यो आमी पृष्ठ 169 पर उद्धृत। मौजूद के वजूद से तात्पर्य परमात्मा की सत्ता में स्थिति है। पृष्ठ संख्या 295। इसको स्पष्ट रूप से यह समझ सकते हैं कि साधक परमात्मा के चिंतन, मनन और उसके साक्षात्कार के लिए उत्कट प्रेम का अनुभव करता है, जबकि उसकी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, बार बार उसके नाम की रट लगाए हुए रहता है, और जब उसमें उन्माद के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं तब वह सांसारिक व्यापारों और विषयों से परे हो जाता है और उसके हृदय में आनंद और उल्लास का उदय होता है। इस अवस्था को वज्द कहते हैं। इसके बाद अगर उसकी साधना पूर्ण है तो वह वजूद स्थिति की को प्राप्त होता है, अन्यथा फिर उसकी चेतना लौट आती है और वह संसार का प्राणी बन जाता है। वज्द के वजूद के बाद वह परमात्मा की सत्ता में स्थित हो जाता है और अब उसका कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं रह जाता।